जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दामोदर लीला बताते हुए कार्तिक मास में 30 अक्टूबर 2015 को वृंदावन धाम में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। दिया था। और उसने एक ऐसे आग ये रुई जल गई थी, उसी तरह से वो रुई उसके मुंह में फंस गई थी। चूहे ने बहुत प्रयास किया कि वो रुई बाहर निकल जाती, मैं कपड़ा मुंह जल रहा था और उठाते उठाते चूहा मर गया। तो क्योंकि वो कार्तिक का महीना था, भगवान ने जो प्रयास कर रहा था चूहा अपने आप को रुई को दाल से निकालने के लिए, भगवान ने उसे नाचने के समान सोचा। तो इसलिए ये तुझ सेवा के लिए वो चूहा काम गया भगवान के साथ। तो शास्त्र में कार्तिक के महीना की महिमा का चर्चा होता है और कार्तिक महीने में हमारा प्रयास रहता है, हम राधा रानी जी की प्रशंसा के लिए हर कार्य करते। कार्तिक के महीने का एक और नाम है दामोदर लीला। और कार्तिक के महीने में अनेक प्रसिद्ध लीलाएं भगवान की भी हम लोग मंदिरों में कार्तिक के महीने में दामोदर शिला का उच्चारण करते हैं। इस लीला का वर्णन भागवतम के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय में है। ये लीला बीती थी कब? कार्तिक महीने। असल में ये लीला बीती थी दिवाली के शुभ अवसर पर। कार्तिक महीने में ही भगवान ने ब्रह्मनाथ पर्वत को उठाया था कार्तिक महीने में। और कार्तिक के महीने में ही शाम को राधा कुंज प्रकट हुए। और कार्तिक के महीने में ही ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन था। ध्रुव महाराज जन्म गए थे क्योंकि विष्णु के विमान है, उन्हें पिता की गोद में बैठने से रोका था। तो अपमान महसूस करके जंगल में आए भगवान को खोजने के लिए। शिक्षा दी थी किस मंत्र को धारण करना, और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को धारण किया और जिन्होंने आकर उन्होंने एक रूप बनाया मिट्टी और पानी से और बड़ी गहराई के साथ उस रूप का चिंतन कर रहे थे और बड़ी गहरी तपस्या की, जैसे कि पहले मैंने हल्की से उठाया दूसरे में सोचे थे और अंत में भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। और ये दर्शन का प्राप्त हुआ कौन से महीने में? और कार्तिक के महीने में महान संत और आप अच्छा जानते हो कि ये सब नाम इस बार की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। भारत से पापा चले गए जल्द जहाज दे कलकत्ता से काम जाने थे पापा जी के गुरु महाराज ने आदेश दिया था 1921 में, तुम पढ़े लिखे युवक हो अच्छे अंग्रेजी बोलते हो ले जाओ महाप्रभु के संदेश को और संदेश दिया नहीं दिया 1921 में। और पापा को 40 सालों से अधिक प्रयास करना पड़ा इस आदेश को सफल बनाने के। पापा जी ने प्रकाशित हो गई थी निर्णय किया अब सबने कहा इस बुरी उम्र में जाओगे पापा की आयु लगभग 70 साल की थी और श्रीमती बना दी एक सहयोग से गुरु महाराज का आदेश है इसको पूरा करना है। और जब विष्णु महाराज जी ने देखा कि बाबा जी की इतनी गहरी भावना है हर मंदिर में ये सब तस्वीर या मॉडल या कुछ बना हुआ सारे भक्त मालगाड़ी में तो सामान भेजती हो और पूरे जहाज में एक ही स्थान पर पैसेंजर के लिए जो बाबा जी को दिया और बाबा जी का 70 असेंबली गुरुदेवी ध्यान में मनाया जन्म सिंह जी बाबा जी ने ध्यान में भंडारा बनाया क्रू के लिए और बाबा जी ध्यान से यात्रा कर रहे थे एक दिन उन्होंने एक हार्ट अटैक आया दो हल्के हार्ट अटैक बाबा जी सोचने लगे शहर में योजना सफल नहीं होगी। चौदह दिन उन्हें फिर से सपना आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण सब देवताओं के साथ बैठकर एक नाव में थे। वो नाव खींच रही थी एक जहाज को, कौन से जहाज? उस जहाज में कौन सी आदमी था? और भगवान ने स्वयं कहा तुम्हारी योजना अवश्य ही सफल होगी। वाले छोटे थे जोशी ने कहा था उन्हें 70 साल की आयु में आप विदेश जाओगे और ऐसा घर बनाओगे जिसमें सारा विश्व निवास कर सकेगा। हाउस तो वही किया, एक घर बनाया इसको जिसमें सारे विश्व के लोग भगवान कृष्ण की सूचना को प्राप्त कर ले। आज इस संस्था के लगभग 600 केंद्र है सारे विश्व में। विश्व का शहर कोई देश है वो भक्त नहीं हो, यारह देशों में भी अलग भक्त है। और कोई चाहे स्वामी अंग्रेज जाते बॉम्बे में सामने जा रहे थे कोविड कैसे वो सारे विश्व में प्रचार हो रहा है। तो प्रभा जी ग्रंथ का निर्माण इसी का निर्माशन हो गया। तो प्रभा जी ने भगवान ने कहा कि भगवानाथ योजना सफल होगी। तो प्रभा जी बॉस्टन पहुंचे, जब बॉस्टन पहुंचे कॉमनवेल्थ फायर में वहां का जब प्रभाव का कैप्टन था उसे नाम था पांडे, तो प्रभा जी और घूमने के लिए ले गया था बॉस्टन शहर में। तो प्रभा जी ने बॉस्टन शहर देखा, देखा माया का कितना गहरा प्रभाव। तो प्रभा जी ने सोचा कौन सुनेगा हमारे संदेश को। प्रभा जी को शुभ संदेश दे गए थे। तो फिर उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने कहा कि राधा रानी की असीम कृपा से हर कार्य सफल हो सकता है। और प्रभु जी के प्रयास से पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में जुलाई के महीने में। फिर अगले साल जुलाई के महीने में दिल्ली में हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका कि गोल्डन जुबली मना रहे थे। सब आओगे? तो कार्तिक के महीने में ही प्रभा जी भी अप्रकट हो रहे थे। तो कार्तिक का महीना बड़ा शुभ महीना है और कार्तिक के महीने में हम भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्ति बढ़ाए। भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हो? तो हमारे आचार्यों ने कहा है कार्तिक के महीने में हमें काम और अच्छा का उच्चारण रोज करना चाहिए। कई मंडलों में जैसे संदर्भ में दिन में 2 बार उच्चारण किया जाता है और अच्छा। और गुरु के मंडल में दिया भी भगवान 2 बार चढ़ाते हैं सुबह और शाम। पर कई कम से कम 1 बार दिन में हर भक्त को दिया अर्पण करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो वो देते हैं कि आप दिया अर्पण कर रहे हो। तो अगर आप दिया दिला कर दूसरे को जो अर्पण कर ले भगवान उस कार्य से और भी प्रसन्न होते हैं। तो आप ये बहुत अभी भाई है तो दिया रोज अर्पण करो। तो साथ में दाम और अक्षरा का जो भाव है उस प्रार्थना का उस पर और हमें जाप करना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा जाप कर सकते हो तो बहुत अच्छा करती हो। हमारे कई बार जो बढ़ा देते लेकिन बेटा वाले से पूछा आप इसमें क्या करें कम से कम कहते कि मेरे इंतजाम शुरू कर दो, बाद में छोड़ना छोड़ देना, और फिर कहते कि मेरी मेरी शुरू तो कार्य कर रहे हैं। हमें श्रीमद भागवत को सुनना चाहिए, ध्यान से भगवत में सारे सास सुनना चाहिए। भगवत में कहा गया है न सर्वे सर्वदेश मंगल से हो गया धर्म की तुम्हें स्वर्गी भक्ति भाव की नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान से भागवत सुनेगा उनके हृदय की मैल दूर हो जाएगी। आपके हृदय में मैल है या नहीं, थोड़ी या ज्यादा? कैसे होते भारत में कम होते तो भगवान को सुनो, भक्तों के सुन लो। शादी के महीने में केवल प्रसाद खाओ, रेस्टोरेंट में नहीं। ये नहीं कि ऐसे तो नियम होना चाहिए, हमेशा प्रसाद खाओ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ने भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है। हमारा नियम होना चाहिए खाए ना पे कुछ, तो खास करके कार्तिक के महीने में प्रसाद खाना चाहिए। फिर रूपक स्वामी के अनेक ग्रंथ हैं, फिर एक छोटा ग्रंथ है ग्यारह श्लोक है जिसका नाम है उपदेशामृत ग्रंथ। इसमें आप पढ़ते हो क्या ग्रंथ है क्या नहीं ग्रंथ है, ये सुनो।
और तुलसी देवी को भी दिया करो
भगवान कृष्ण के अच्छा भंडारा और भक्तों के संग रहो। और अगर आप तपस्या का पालन कर सकते हो तपस्या करो, तपस्या का परम जो कि भगवान के नहीं नामों के एक नाम है अधोक्षेरा तारीख है जो कि बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। तो कहा क्या है भगवान को समझना आसान नहीं है, तो तपस्या के माध्यम से भगवान को तो शास्त्र कहा गया है तपस्या बढ़ाओ। उदाहरण क्या क्या थोड़ा ज्यादा कर लो, थोड़ा प्रसाद कम कर लो, विश्राम कम करो, भगवान के ज्यादा सेवा करो। अगर आप सारा साफ कर सकते हो तो सबसे बेहतर है, थोड़ी सेवा तपस्या बनाओ, वो बनाओगे तो इसको लाभ मिलेगा। कार्तिक के महीने में भगवान की कौन सी लीला भी दी थी, धामधर लीला। धामधर नाम का अर्थ है दसी, आदर का अर्थ है वो लीला भी दी थी जिसमें भगवान को किसने माना था, उनकी माता ने। फिर दामोदर लीला जैसे आप सब परिचित हो, इस सभा में कोई है जो दामोदर लीला से परिचित नहीं है? भगवान की लीलाएं है जितना आप सुनो उतना ही कम है। जैसे स्कंद में भगवान की बाल लीला को आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने तुमने क्या मिट्टी खाई है, क्योंकि उनके भाई बालराम और मित्र ने शिकायत कर दी थी क्या स्टेशन ने मिट्टी खाई है। तो भगवान के धर्म के भगवान ने पूछा ब्रिटिश मिश्रा के लिए तुमने आज बेटी खाई, भगवान ने कहा मैं बेटी क्यों खाऊं, खेलते समय मेरे भाई और एक मित्र हार गए थे, राम से दाल बनवाने के लिए झूठी शिकायत कर दी। पर अगर आपका विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खो के दिखा देता हूं। तो बाधा ने कहा ठीक है दिखाओ मुंह खो। जो हमारे मुंह खोल तो क्या है हमारे पूरे विश्व का पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन देखा तो माता समझ नहीं पाए ये सपना आ रहा है उसे ये सच्चाई है। भगवान जीवन हमारी शक्ति द्वारा समझ नहीं पाई क्या है क्या बीत रहा है। भगवान की जो लीलाएं हैं अद्भुत है। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चाहे मेरा प्रकट होना पर होना जो व्यक्ति समझ आए वो व्यक्ति जन्म के बदल से मुक्त हो सकता है। भगवान की अनेक लीला है जिन्हें एक प्रसिद्ध लीला है एक श्लोक हमको पढ़कर सुनाएंगे। ये श्लोक है भगवान के दस स्थान के दो अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक शिशु करवा था। एक शिशु नंद देवी कवनंद नीव प्राशु मन स्वयं
अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा सारी लोग नानियां अन्य घरेलू काम कार्यों में व्यस्त हैं तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत गाते हुए उन्हें गुनगुना कर आनंद लेने लगे।
अब गुराओं के अनुवाद
श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी लोग नानियां अन्य घरेलू काम कार्यों में व्यस्त हैं तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुना कर आनंद लेने लगी।
श्लोकों के ऊपर कई महान आचार्य ने अपने विचार प्रकट किए और प्रापणी जब भगवत अनुवाद कर रहे थे अपने सामने पढ़ते थे महान आचार्यों के भावों को भावों को लेकर हमें ये तात्पर्य दिए है। तो भगवान के एक नाम एक नाम क्या है मक्खन चोर मक्खन चोर भगवान क्या चिरा रहे थे मक्खन चिरा रहे कोई पकड़ नहीं पाया। एक समय तेरी गोपियां इसमें माला लोग कहती थी हाँ तुम्हारा बेटा अगर हमारे घर में मक्खन चिरा रहे हैं माता कहती थी कोई प्रमाण है क्या किसी ने कभी पकड़ा है मेरे घर में मेरे पति के पास 9 लाख गाय है मेरा बड़ा आपके घर में जीवन जाएगा। एक दिन भूखे गई थी यमुना नदी में पानी लाने के लिए, और भगवान के मंदिर जाकर मक्खन चुराने थे, तो भूखे घर थे। भूखे के घर भगवान जाते थे मक्खन चढ़ने के लिए नहीं, और आचार्य ने कहा है गोपियों का बड़ा गहरा स्नेह था भगवान के प्रति, इसलिए एक भाव से वो गोपियों में घर आ जाते, यही भगवान को भगवान के घर में मक्खन चढ़ने थी। तो एक गोपी गई थी यमुना में स्नान करने, वो वापस आए तो कृष्ण को पकड़ लिया, भगवान भाग नहीं पाए। तो गोपी ने कहा अब तो मैंने कृष्ण को पकड़ लिया, हमेशा जब मैं शिकार करती हूँ दोनों माता से, वो कहती है कहाँ प्रमाण, तुमने देखा है मुझे प्रूफ दो, प्रमाण दो कि मेरा बेटा था। तो गोपी बड़ी खुश हुई, हमने कृष्ण को लेन हैंड पकड़ लिया, चलो तहसील कर ले जाती हूँ तुम्हारी बहुत बड़ा। तो वो भी भगवान को अपने बेटे को झाड़ी थी ईश्वर के घर, और रास्ते में अपना हाथ निकाल लिया और बेटी को की बेटे का हाथ आगे कर दिया, पर वो भी को पता नहीं लगा, वो गई तो कहते हो प्रमाण सीख है ये लो प्रमाण, तुम्हारी बेटी को मेरे पकड़ा उसके सुना था। तो ईश्वर बात लगा कैसे बेटा को लिया फिर तुम्हारे बेटे का प्रयास बता दो कैसे बांधने को, गोपियों के घरों में मक्खन चुराते थे, जैसे कहा ये भाव था तो सेवा का भाव था, ईश्वरी माता के मन में थोड़ा बैन था, बैन ये था जो सोची थी शहर पड़ोस के घरों में मेरे घर से ज्यादा अच्छा मकान है, इसी मेरा बेटा दूसरे घर में जाने की आता है। तो एक दिन दीपावली वाले दिन सूर्य माता बहुत जल्दी उठे सुबह 3 बजे, और उस समय उन्होंने ये सोचा मेरे मक्खन निकालूंगी मेरे बेटे से। उन दिनों में जैसे कहा गंगा के 9 लाख गायें थी, और उन दिनों में कई गायें थी जो सुगंधित दूध देती थी, जैसे आज के जमाने में अगर आपको सुगंध देना है दूध में तो बनेगा है कुछ फ्लेवर डालना पड़ता है। उन दिनों में गायों को सुगंधित घास खिलाया जाता था और सुगंधित दूध भी पड़ता था। ईश्वर माता ने देखा रुचि दासियां हैं रुचि सेवा में लगी है, असल में ईश्वर माता रानी की उनका कर्तव्य नहीं था कि मुझे बोला है ये काम उनके घर में दासियां करती थी, क्योंकि इतनी शिकायत आ रही थी माता को सब तरह से आपका बेटा आता है मेरे घर में मैं खुद करती हूँ ये काम। देखो तू चुनाने का क्या भाई भाई देखो ये और मदन करते समय एक गीत का उच्चारण कर रही थी। उस गीत में क्या था भगवान की बात की राव का वर्णन भगवान ने कृष्णों का मत कर दिए थे। जब कृष्णों का मत किया तो जो ब्रजवासी थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। वो कहते थे ये कोई देवता तो नहीं है बड़े बड़े राक्षस आए थे भगवान का वध करने के लिए भगवान ने सबका वध कर दिया। तो ब्रह्मजी थे वो भी डर आश्रय थे कहता है इस बालक के ऊपर भगवान की खास कृपा है कई नारायण तो नहीं है। ईश्वर माता ने एक गीत बनाया था उस गीत में थे भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो एक तरह से ईश्वर माता मथन कर रही थी क्या इसकी खुशी के लिए भगवान की खुशी के लिए मथन करना था। दूसरी तरह से मन से सोच रही थी कि कैसे भगवान की खुशी के लिए सबसे अच्छा मक्खन बनाओ इतना अच्छा मक्खन इतना अच्छा टेस्ट कि पड़ोस के घर में मेरा बेटा कभी जाएगा ही नहीं। ये था उनका पर अपने जीव से क्या कर रहे थे भगवान की लीलाओं का बोलना हाथों से क्या कर रहे थे हाथों से माफी मांगे उन्होंने चुड़िया पहनी हुई थी और पेड़ और ये चुड़ियों से भी आवाज आ रही थी जैसा कर्तव्य में जाते हैं आवाज आती है। तो एक भगवान मगर किशोर माता उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हमारा क्या भाव होने लगे। जैसे किशोर माता ने गीत बनाया था जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन था ईश्वर माता ने गीत का उच्चारण करते हुए बड़ा आनंद अनुभव कर रही थी। उसी प्रकार हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस सेवा के साथ हम क्या करें क्या करें भगवान के नामों का आप पूछोगे हमें गीत बनाना चाहिए महाराज हमें गीत बनाएंगे उसका ध्यान नहीं आपको ये कठिनाई करने की कोई आवश्यक नहीं। आपने भगवान ने गीत बना दिया है और सब हमारे गीत बन गया है हरे कृष्ण महामंत्र हम सब के लिए भाव होना चाहिए। शरणम भगवान का सहारे हो बिजनेस कर रहे हो बाल कर रहे हो घर में हो अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां जोर जोर चारे नहीं कर सकते तो मन में कर लो पर अगर ऐसी स्थिति जहां आप उच्चारण कर सकते हो तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम निरंतर सततम के चयन करो कि हम सदा निरंतर क्या करें भगवान के नामों का उच्चारण करें। ईश्वर माता की इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा मिलती है जिस प्रकार ईश्वर माता ईश्वर से मथन द्वारा दही का मथन कर रही थी साथ भगवान का गीत गा रही थी हमें भी क्या करना चाहिए जो भी हमारी सेवा हो चाहे भोग मंदिर रसोई बना रहे हो यशोदा माता का भाव क्या था? उनका भाव ये था कि भगवान के बड़ा अच्छा दर्शन बना दिया, जब भगवान उठे उन्होंने देखा कि नहीं माता तो वो है ही नहीं वहां, और मम्मी सुधा माता का प्रयास था मेरे उठने से पहले मैं अच्छा मुझे ताजा होकर बना तो बेटा उठ गया माता मंत्री थी राजस्थान से दूर भी रह गए पड़ोसी ने रसोई में दूध उबल रहा था। आ देखिए सोनो माता एक साथ अपने बेटे की खुशी के लिए अनेक रूपों से सेवा कर रही थी। एक तरफ से रसोई में चूल्हे में ताजा सुगंधित दूध को उबाल रही थी, दूसरी तरफ से क्या कर रही थी मतलब कर रही थी तो दूध को उबल रहा था और बर्तन से बाहर पीने लगा। चारों गया भाव से दूध ने सोचा भगवान के स्तन से दूध पी रहे हैं मुझे क्यों नहीं पिए। आध्यात्मिक जगत में दूध देवी चेतना रहती है, हर चीज में चेतना रहती है आध्यात्मिक जगत में, तो दूध ये सोच रहा था इसलिए भगवान तो माता के माँ के स्तन से दूध पी रहे हैं बिना दूध नहीं पिएगी तो उबलने लगा पीजी के साथ। यशोदा माता ने देखा कि दूध कड़ाई के बाहर आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है, यशोदा माता पेटे को छोड़कर कहाँ गए वो दूध को संभाल रही है। ऐसे लोग आप ये कह सकते हो दूध की क्या बर्बाद थी, उनके घर में 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय से हम अंदाजा लगा सकते कि घर दूध दूध नहीं बन रहा होगा, तो ये जो दूध था एक खास सुगंधित गाय वाला दूध था जिसे भगवान की जरूरत था मक्खन बनाना चाहती थी। तो भगवान ने देखा माता ने उसको छोड़ दिया है, तो भगवान जरा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया
क्या क्या
मतलब देखकर छोटे मती को तोड़ दिया। इस युग से तोड़ा
दिमाग को आवाज में नहीं आई
जोर से आवाज आएगी तो इतने हल्के तरीके से पत्थर फेंका नीचे मते के कुछ आवाज में नहीं आई किसी को।
जब यशोदा माता वापस लौटी रसोई से तो क्या देखा
क्या देखा मक्खी पीली हुई है और हर जगह है हर कोने कोने में,
और क्योंकि भगवान वहां थे नहीं तो वो समझ गई कि मेरे बेटे की शरारत है।
अरे भगवान हो गए बात थी तो समझ गए कि मेरे बेटे की शरारत है,
और
माता ने देखा कि दही के ऊपर बेटे के पैरों के निशाने थे, पूरा मटका भरा हुआ था उसको तोड़ दिया पूरे कमरे में सदे रहती तो दही में क्या था उनके बेटे के पैरों के निशाने,
उनके सहयोग से वो पहुंच गए यहां भगवान थे।
भगवान क्या कर रहे थे मसाला पीसने की ओपी को उल्टा करके किसको कहकर
माखन बांट रहे थे, किसको बांट रहे थे
हमारे आचार्य ने इस विषय में कहा है कि जब भगवान राम पृथ्वी पर थे तो बंधु ने बहुत सेवा की भगवान की है ना, बंधु की सेवा से भगवान ने विजय भी प्राप्त की। तो भगवान राम बंधु की देखभाल पूरी पूरे रूप से नहीं कर पाए, तो उनकी देखभाल फिर कृष्ण भगवान ने की। भगवान मक्खन बांट रहे थे, पर बांटते वाले चारों तरफ देख रहे थे, उनको शक था कि मेरी माँ भी आने वाली है। तो एक मक्खन खा रहे थे, बांट रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे मेरी माँ का मेरा पहुंचेंगे, और वहां पहुंचे शरीर के साथ दुर्गा बाहर निकल आया। इन्होंने जैसे माँ को देखा उसका रूप से चार माँ ने भागा, तो माता भी भागी। वैसे भगवान को पकड़ना आसान है क्या? भगवत ने कहा कि रहे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी हजारों साल के परिश्रम से भी भगवान को नहीं पकड़ते। भगवान को पकड़ना आसान है? आसान है? बहुत मुश्किल है। यशोदा माता ने पकड़ लिया, भगवान भागे, यशोदा माता के पीछे भागे, माता ने पकड़ लिया। तो अगर भगवान को पकड़ना चाहते हो तो एक ही साधन है, क्या वो साधन? भक्ति योग। आप भगवान को ध्यान से नहीं पकड़ सकते, खूबसूरती से नहीं आकर्षित कर सकते, ऊंचे स्थान से आकर्षित नहीं कर सकते, सेवा के मामले से भगवान को की सकते। यशोदा माता में सेवा के अलावा और कोई भाव नहीं था, उनका हर कार्य भगवान की खुशी में किया जा रहा था। तो उनके यशोदा माता ने देखा बंधु कबो को बांटे नहीं अर्जुन के साथ माता ने छड़ी को फेंक दिया। तो मेरा डर था, डरा हुआ था,
छड़ी से मारेंगे नहीं मेरी माँ।
फिर ईश्वर माता ने सोचा छड़ी से नहीं मारूंगी, पहले सोचा था छड़ी से मारूंगा, सब सिखाएंगे। हर जगह पड़ोसियों की तरफ से कह रही थी, अर्जुन का खुद का अनुभव था, उन्हें घंटे की मुर्गी तोड़ दी, उन्होंने छड़ी फेंक दी। उन्होंने सोचा मुझे इसे बांधने दो, क्योंकि मैं छड़ी से मैं मारूंगी फिर भाग जाएगा बेटा, फिर मैं ढूंढने में कहा जाऊंगी। वो ये भी डरता एक बार आप छोटे बच्चों को डाल दो तो भाग जाते हैं। तो माँ पूछा, माँ जरा डरी हुई थी क्या किया जाए, तो मैं इसको बांध देती हूँ, बांधूंगी तो भागेगा नहीं किया, अगर मारूंगी तो भाग जाएगा। तो यशोदा माता ने छड़ी को फेंक कर जो भाग रही थी बेटे को पकड़ने के लिए, उनके बाल जो सजे हुए थे माँ की फूल के साथ और रेशम का एक बड़ा तागा था उनके बाल में, वो फूल भी गिर गए थे, माता ने पहले मुझे आगे से बांधने की कोशिश की थी, और जब ज्ञान इतना छोटा था तो फिर निष्णा माता जी और शिवों को जोड़ा, हमारे छोड़े थे। ये जो लीला बीती थी, ये लीला बीती थी गोकुल धाम में, भगवान की आयु थी 3 साल और 4 महीने, वहां जो 3 साल 4 महीने गए थे। तो माता ने कई रहस्यों को जोड़ा, और जो गोपियां थी पड़ोस की, उस समय लीला का दर्शन देख रही थी, सब देख रही थी। विश्वनाथ माता इतनी कमी है, एक छोटे बेटे को बांट नहीं सकती, सब हंसे थे। विश्वनाथ माता के शरीर से पसीना निकल रहा था, वो भी आश्चर्य थी, मैं क्यों नहीं बांध पा रही। तो भगवान माता की परीक्षा कर रहे थे, भगवान ने देखा कि भगवान माता ने बड़ा दृढ़ भाव है उनको बांधने के लिए, फिर भगवान तैयार हो। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे में दृढ़ भाव होना चाहिए। इसी रूप गोस्वामी उपदेश में कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य सत्य कर्म प्रवर्तन संगता के सत्य सभी भक्ति। अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो आपको उत्साह उत्साहित होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? आगे आप इसकी सेवा कर रहे हो साथ में निश्चय डिटर्मिनेशन दृढ़ भाव, ये नहीं पूरी कठिनाइयां आई हुई तो हम इसलिए तो जाते हैं सेवा करें नहीं करें, हमारे दृढ़ भाव होना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें भक्ति को लेके आना। भगवान स्वामी कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, तो कृष्णा भक्ति को हाथ से मत फिसने दो। रास्ता तैयार हो इसके लिए, अब चाहते कृष्ण भक्ति फिसल जाए हाथ से तो कीमत भरोगे? कीमत मतलब जो हम प्रतिकूल कार्य है उसे त्याग करो, जो अनुकूल कार्य है उसे स्वीकार करो। फिर जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ में इतना दिल भाव है, पसीना आ रहा है, लोग हंस रहे हैं मेरी माँ के ऊपर, भगवान मान गए, ठीक है अभी आप मुझे पालन सकते हो। फिर माता ने मानदा नामो दर नामो कर्णी दर ये ऐसे ने, तो फिर भगवान को बांध तो दिया था ऊपर के साथ, तो साथ में भगवान ने अपने तक ज्ञान तभी की एक और भविष्यवाणी को पूरा करना था। भगवान बांधे हुए थे ऊपर को खींच कर ले जा रहे थे, और भगवान ने देखा कि सामने दो वृक्ष है, दो पेड़ है, उन पेड़ों में कौन थे? जनक कुमार और मुनि, जो पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। नारद मुनि के सामने आए थे एक दिन, जबकि नारद मुनि ने देखा कुबेर के पुत्र इतने नशे में हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं क्योंकि सामने खड़े हैं मुंगे नशे में, उन्होंने उन्हें एक शिक्षा दी, तुम नंगे हो फिर हो जैसे फिर हो जाओ वृक्ष बन जाओ। कितने सालों के लिए, कितने सालों के लिए? देवताओं के 100 सालों के हमारे पृथ्वी के 6 महीने दिनों के 12 महीने के बराबर है, प्लीज श्राप दीजिए। तो ये कहा था अंदर तुम्हारा उद्धार उतना होगा उतने भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान ने ये दो पेड़ों को देखा, समझ गए कि नारद मुनि की थी। नारद मुनि ने कहा है इनको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान ने उत्तर को घसीट कर दो पेड़ बीच में फंसा दिया और बड़ी सरलता के साथ वो ऊपर को खींचा, दो पेड़ गिर गए। वो दो पेड़ों से क्या निकले, जिन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि नारद मुनि की असीम कृपा से आज मेरे उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। जब ये दो पेड़ गिरे तो धन मना माता और सारे दूसरे हल्के शिखर से उन्हें इतनी भारी आवाज सुनी तो घबरा गए, भागे भागे आए देखने के लिए। जब उन्होंने देखा कि भगवान बड़े हैं और दो पेड़ उनके बिल्कुल बाजू में, पूछा भगवान के विश्व से ये पेड़ कैसे गिरे, तूफान आया था क्या, आंधी आई थी क्या? उनके विश्व ने कहा ये पेड़ आपके बेटे नहीं गिरा है, अपने ऊपर को दो पेड़ों के बीच में फंसा कर खींचा और ये पेड़ गिर गए। धनराज कहने लगे ये कैसे संभव है, मेरा छोटा बेटा 3 साल का इन्हें दो पेड़ों को कैसे गिरा सकेगा, उन्हें विश्वास देगा। तो भगवान ने दो पेड़ों को गिरा। जब भगवान को पालना था रस्सी के साथ तो किसी ने बालराम उनके भाई को सूचना दी, कृष्ण को बांध दिया है किसी ने। बालराम को पता था कि अनेक सूर आते थे भगवान का भक्त ले गए। किसी ने कहा कि भगवान को बांधा हुआ है कल के साथ, तो बालराम जी आए, कौन है जिसे भाई को बांधा है, मैं संकर्षण हूं ग्रंथ को नष्ट कर दूंगा। और ऐसे जोर से कहने के लिए बालराम जी वहां पहुंचे और बालराम को पता लगा इस समय माता ने बांधा है बांधा है, तो गुरु चुप हो गए, गुरु चुआ बंद है। तो जो मैंने देखा कि ये समय माता ने बांधा है वो पालन पालन देगा। अब जानते हो ये कौन है, ये नारायण है आपको बेटा। सुंदर माता ने कहा मेरे घर में सारे अवतार ले रहे होंगे। फिर बालों ने जाके अपने भाई कहा था घरों से मकान में देखा कि बेटा बंधा हुआ है। मां ने पूछा किसे तुम्हें बांधा, किसे कहा बाबा ने कहा मान रहे के दो भाग है द्वारा भगवान का गुणगान है। ये कहा कि आपसे मन सदा आपका चिंतन करे, हमारी वाणी सदा आपका उच्चारण करे। तो ये दाम रविंद्र का महीना है, तो दाम प्रार्थना में उन लोगों की प्रार्थना बताते हैं। हमें इस प्रार्थना का अर्थ जो है उसका चिंतन करना चाहिए। और ये जो दोनों ये जो छोटी निकले बार बार उसका क्या भाव, एक गुरु का भाव यह है, अगर प्रयास करोगे तो ही भगवान को समझ पाओगे। ये नहीं आप बैठे बैठे रहो हमसे नियमों का पालन न करो ना मत करो तो सोचोगे भगवान को समझ पाओगे। अगर भगवान को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर आप प्रयास करोगे तो फिर भगवान की कृपा से उन्हें समझ पाओगे। तो प्रयास करना पड़ेगा तो ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। भगवान कहते नहीं, ये तुम्हारे प्रयास करोगे जितनी मात्र में जो मेरी शरण में आएगा उतना ज्ञान अर्जित होगा। तो अगर आप प्रयास कर लेगा ये सोचिए विकार्ति विश्व अवसर पर हम राम धाम आए हैं, हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हम सदा भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, सालों की सिद्धि लाओगे, फिर भगवान देखेंगे और जो आपकी इच्छा है उसको सफल बनाने के प्रयास भी कर रहे हो भगवान क्या कहेंगे, हाँ मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मेरे शरण में पहुंच सकोगे। तो ये जो राम लीला की कथा है हमने तक और चर्चा की, इस लीला का भाव यह है अगर हम ये सुनो माता जैसे प्रयास करेंगे भगवान को प्रसन्न करके भगवान आपको उन्हें बांधने में देंगे। आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है कि आप भगवान को मान पाओ उन्हें शरण न हो पाओ, तो प्रयास करो। कई बार लोग कहते हैं हमें भगवान का धाम तो चाहिए पर हमें कुछ तपस्या नहीं करना, हमें बैठे बैठे भगवान का धाम चाहिए, वो संभव नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य महामेकम हम तुम सर्वता अगर तुम सर्धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव कि धन मन धन से क्या करें भगवान की सेवा, तो धन मन धन से भगवान की सेवा करेंगे तो आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जो है कृष्ण प्रेम। तो भगवान ने बड़ा सरल साधन दिया है वो है महामंत्र का उच्चारण कभी कभी नाम रूपा कृष्ण होता है। आप सबसे निवेदन है महामंत्र का उच्चारण कीजिए, आप सबका सौभाग्य है कि आप बाबा जी के शुद्ध संस्था के साथ जुड़े हो, यहाँ के आपको शुद्ध संदेश दिया जा रहा है। इस शुद्ध संदेश के पालन में कठिनाई जरूर होती है, जैसे कि भगवान कहते हैं सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए उसका लक्षण यह है शुरू में कड़वा बाद में मीठा, परंतु जिसके द्वारा आत्मा सुखता का ज्ञान हो। तो भक्ति के मार्ग में कई बार हमें उन कार्यों को त्यागना पड़ता है जिसमें हमारी बड़ी गहरी रुचि है, तो क्यों त्यागते हैं क्योंकि हम त्यागेंगे तो भक्ति के विजय का पालन कर पाएंगे। तो जैसे लोगों के सामने कहा था हम कह चुके हैं जो जीवन धन पड़े भरो भक्ति को प्राप्त करो, तब त्याग हो इसके लिए। और आप जानते हो जो एक महीने में कौन क्या आएगा, हाँ ग्रंथ में मैराथन। तो पिछले कई सालों से आप भक्तों ने बहुत प्रयास किया है ग्रंथों को बांटने के लिए, और ग्रंथ को आप क्यों बांटते हैं क्योंकि मैं जितने देने तैयार है। तो आप सब में कौन कौन हो जिन्होंने पिछले साल सहयोग किया था किसी भी मंदिर का कंसर्टन की सेवा में, तो लगता है कि आप में से जो उपस्थित हैं 50% लोगों ने सहयोग दिया था 50% नहीं, तो जिन्होंने सहयोग किया था ये सब ये करोगे, और जिन्होंने नहीं किया था वो करेंगे, आपको कृपा चाहिए या नहीं। कई बार लोग पूछते हैं आपकी संस्था में शॉर्टकट नहीं है भक्ति के लिए, भारत में सबको आदत है बनिया नहीं करने की, 10 रुपए भाव लगाएंगे 8 रुपए कैसी बात कह रहा है कह बोलो भक्ति मान में आकर भी हमने गिरी करते हैं इसमें छोटा रास्ता नहीं है एक छोटा रास्ता है अपने भगवान के प्रचार में से भगवान कहते हैं क्षमा करें प्रचार करते हुए सब सुख दिया तो आप सब पिला के पक गया था ने उसी तरह काम भी करें हरे कृष्ण
for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.